सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहरी बातचीत करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, उम्र का बढ़ना। ये तो एक ऐसा सच है जिससे कोई बच नहीं सकता, है ना?
हाँ, पर सवाल ये है कि क्या ये सच उतना अटल है जितना हम हमेशा से मानते आए हैं? आज हम इसी बड़े सवाल को कुरेदेंगे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर की काफी चर्चित किताब लाइफ स्पैन, Why We Age and Why We Don't Have To के बारे में।
बिल्कुल।
और ये किताब ना उम्र बढ़ने की पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग, बल्कि कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी नजरिए से देखती है।
हाँ, और ये नजरिया मुझे लगता है आज के समय में बहुत ही रेलेवेंट है। देखिए, कौन नहीं चाहता कि एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जिए।
सही बात है।
तो ये किताब इसी संभावना पर विचार करती है कि क्या उम्र बढ़ना वाकई कोई नेचुरल चीज है, कोई अनिवार्यता है, या ये बस एक कंडीशन है, शायद एक बीमारी की तरह जिसका क्या पता इलाज भी मुमकिन हो। चलिए इसी चौंकाने वाले विचार की तह तक चलते हैं आज।
तो इस बोल्ड दावे के पीछे जो शख्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। डॉक्टर डेविड ए. सिंक्लेयर, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं।
हाँ।
और उम्र बढ़ने यानी एजिंग और लॉन्जिविटी मतलब दीर्घायु, इस फील्ड में दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स में से एक हैं।
और मुझे लगता है उनकी बात में वजन इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना, उनका 2 दशकों से ज्यादा का रिसर्च है इसके पीछे।
बिल्कुल, खासकर सर्टविंस पर। ये एक तरह के प्रोटीन है जिन्हें कई बार लॉन्जिविटी जीन्स भी कहते हैं।
अच्छा।
और कैसे, ये NAD+ नाम के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ एक क्या कहते हैं अकेडमिक रिसर्चर नहीं है, वो इस साइंस को बनाने वालों में से है और मुश्किल बायोलॉजी को ना आम भाषा में समझाने में माहिर है। और मैंने सुना है कि वो खुद भी अपनी रिसर्च से निकली बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं।
हाँ, ये बात तो उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ा देती है।
बिल्कुल।
तो आते हैं किताब पर, ये किताब आखिर कहती क्या है। इसका सबसे बड़ा आइडिया और शायद सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल भी यही है कि उम्र बढ़ना, बुढ़ापा, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक बीमारी है।
एक बीमारी।
हाँ, और अगर ये बीमारी है तो फिर इसका इलाज भी हो सकता है, इसे धीमा किया जा सकता है, और कौन जाने शायद भविष्य में इसे पलटा भी जा सके।
ये सोचना ही अपने आप में कितना कितना अलग है ना, क्योंकि आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि भाई वक्त के साथ शरीर घिसता है, टूट फूट होती है और बस वही बुढ़ापा है।
सही।
लेकिन सिंक्लेयर इससे आगे जाते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन थियरी ऑफ एजिंग पेश करते हैं, मतलब उम्र बढ़ने का सूचना सिद्धांत,
सूचना सिद्धांत।
हाँ, उनका कहना है कि उम्र बढ़ना असल में जानकारी का खोना है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जेनेटिक जानकारी यानी हमारे DNA का लॉस नहीं है, वो तो मोटे तौर पे ठीक ही रहता है।
अच्छा, तो फिर किस जानकारी का नुकसान?
ये नुकसान होता है एपिजेनेटिक जानकारी का।
एपिजेनेटिक जानकारी, ये क्या चीज है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे।
हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा DNA एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें लाखों किताबें हैं यानी हमारे जीन्स।
ठीक है।
अब एपिजीनोम वो लाइब्रेरियन है, उसका काम है ये तय करना कि कौन सी किताब कब पढ़ी जानी है, कौन सी बंद रखनी है, मतलब कौन सा जीन कब ऑन होगा कब ऑफ, ताकि कोशिका अपना सही काम करे।
अच्छा, समझ गया, लाइब्रेरियन जो बताता है कि क्या पढ़ना है।
एग्जैक्टली। अब सिंक्लेयर कहते हैं कि समय के साथ जो सेल्युलर स्ट्रेस होता है, टूट फूट होती है, उसके कारण ये लाइब्रेरियन यानी एपिजीनोम थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है।
कंफ्यूज कैसे?
वो शायद गलत किताब पढ़ने लगता है या सही किताब को सही समय पर नहीं पढ़ पाता।
ओहो, तो मतलब कोशिकाएं एक तरह से अपनी पहचान भूलने लगती हैं, जैसे आपने कहा लिवर सेल शायद थोड़ा किडनी सेल जैसा बर्ताव करने लगे।
बिल्कुल बिल्कुल, इसी कंफ्यूजन को, इसी पहचान के धुंधलाने को ही सिंक्लेयर बुढ़ापा कहते हैं। और किताब का निचोड़ यही है कि अगर हम इस इन्फॉर्मेशन लॉस को समझ लें और इसे ठीक करने के तरीके खोज लें, तो हम अपने शरीर के अंदर के ही लॉन्जिविटी पाथवेज यानी लंबी उम्र देने वाले रास्तों को फिर से जगा सकते हैं। और यहां मकसद सिर्फ ज्यादा साल जीना यानी लाइफ स्पैन बढ़ाना नहीं है।
हाँ, ये बात जरूरी है।
बल्कि ज्यादा स्वस्थ साल जीना है, हेल्थ स्पैन, मतलब जिंदगी का वो हिस्सा जो हम बिना गंभीर बीमारियों के एक्टिव रहकर बिताते हैं।
ये हेल्थ स्पैन वाली बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अच्छा, तो किताब की बनावट कैसी है? आपने कहा 3 हिस्से हैं।
हाँ, मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है उम्र बढ़ने का क्यों, मतलब साइंटिफिक बेसिस क्या है। दूसरा है कि हम आज क्या कर सकते हैं, अभी क्या समाधान है हमारे पास। और तीसरा है कि भविष्य क्या है, आगे की राह और समाज पर इसका क्या असर होगा।
ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हम क्या जानते हैं।
जरूर।
अतीत की बात।
जरूर। तो किताब की शुरुआत होती है सर्वाइवल सर्किट के कॉन्सेप्ट से। सिंक्लेयर बताते हैं कि हम सबके अंदर, बल्कि हर जीव में, कुछ बहुत पुराने जीन्स होते हैं।
अच्छा।
ये जीन्स मुश्किल हालात में एक्टिव होते हैं, जैसे मान लीजिए भोजन की कमी हो गई या डीएनए को कोई नुकसान पहुंचा, तो ये एक्टिव होकर शरीर की मरम्मत और सुरक्षा करते हैं। सिंक्लेयर का तर्क है कि यही हमारे दीर्घायु जीन है
जी।
ये असल में हमें बुरे वक्त से बचाने के लिए बने थे, और अगर हम इन्हें सही तरीके से एक्टिव रख पाए तो ये हमें लंबा और स्वस्थ जीवन दे सकते हैं।
ये सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है। इसके आगे क्या है?
इसके बाद आता है एक बड़ा दिलचस्प अध्याय, द डिमेंटेड पियानिस्ट,
भटका हुआ पियानो वादक।
हाँ, ये इन्फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग को एक कमाल के रूपक, एक मेटाफर से समझाता है। सोचिए, हमारा डीएनए जो है वो संगीत की एक शीट है जिस पर एकदम परफेक्ट धुन लिखी हुई है।
ठीक है।
जिसे ये धुन बजानी है। अब शुरू में तो वो बहुत अच्छा बजाता है, लेकिन समय के साथ लगातार स्ट्रेस डीएनए में छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है।
हाँ, वो तो होती है।
और उसको ठीक करने के लिए सर ट्विंस जैसे मरम्मत करने वाले दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ में ना पियानो वादक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जो मरम्मत करने वाले हैं वो हमेशा अपनी सही जगह पर वापस नहीं लौट पाते।
अच्छा।
नतीजा, वादक धुन भूलने लगता है, गलत सुर बजाने लगता है। इसी को वो एपिजेनेटिक शोर कहते हैं। और जैसे जैसे ये शोर बढ़ता है, कोशिकाएं अपनी पहचान खोने लगती हैं।
वाह, ये पियानो वाला उदाहरण तो वाकई बहुत अच्छे से समझाता है। तो सवाल ये है कि ये एपिजेनेटिक शोर बढ़ता क्यों है? क्या हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल की, उसका इसमें कोई रोल है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। यहीं पर अगला हिस्सा आता है, एन एपिडेमिक ऑफ ग्लटनी, यानी पेटूपन की महामारी।
पेटूपन की महामारी मतलब ज्यादा खाना?
एग्जैक्टली। ये खक हमारी आधुनिक खानपान की आदतों को इस सर्वाइवल सर्किट से जोड़ते हैं। वो दो मुख्य रास्तों, पाथवेज की बात करते हैं। एक है एमटीओ पाथवे। ये शरीर में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स को सेंस करके ग्रोथ को बढ़ावा देता है।
ठीक है, ग्रोथ वाला रास्ता।
हाँ, और दूसरा है एएमपीके पाथवे। ये एनर्जी की कमी को सेंस करता है और शरीर को बचाव, यानी प्रिजर्वेशन और मरम्मत मोड में डालता है।
ग्रोथ और बचाव, तो हमारी दिक्कत क्या है?
दिक्कत यह है कि हम आजकल लगभग लगातार खाते रहते हैं, है ना? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच बीच में स्नैक्स।
हाँ, बात तो सही है।
इससे होता यह है कि वो जो एमटीओ पाथवे है, ग्रोथ वाला, वो करीब करीब हमेशा ऑन रहता है। शरीर लगातार ग्रोथ मोड में है।
ओह।
और इसका नतीजा, जो बचाव और मरम्मत वाले रास्ते हैं, जैसे एएमपीके और सर्टविन, वो दबे रह जाते हैं। हम अपने शरीर को कभी वो थोड़ी मुश्किल वाला सिग्नल ही नहीं देते जिसके लिए हमारा सर्वाइवल सर्किट बना था। और लेखक का मानना है कि ये चीज उम्र बढ़ने की रफ्तार तेज कर सकती है।
मतलब ये जो आराम और भरपूर खाना है, ये शायद उतना अच्छा नहीं है हमारे सिस्टम के लिए जितना हम सोचते आए हैं। तो ये तो हुई समस्या की जड़। अब आते हैं समाधान पर, किताब का दूसरा हिस्सा, हम आज क्या कर सकते हैं।
बिल्कुल। यहाँ से किताब प्रैक्टिकल चीजों की तरफ मुड़ती है, और एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, हॉर्मेसिस।
हॉर्मेसिस, ये क्या है?
इसका मतलब है कि थोड़ा सा तनाव सही मात्रा में, वो असल में हमारे शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, फायदेमंद।
तनाव फायदेमंद, ये कैसे?
ये हमारे डिफेंस सिस्टम को जगाता है, उसे मजबूत बनाता है। जैसे टीके काम करते हैं ना, बीमारी का हल्का सा रूप देते हैं ताकि शरीर असली चीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाए।
दिलचस्प। तो हम ये अच्छा वाला तनाव या हॉर्मेसिस कैसे पैदा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में?
किताब कुछ तरीके बताती है। पहला, कैलोरी कम करना, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब दिन में कुछ घंटे या हफ्ते में कुछ दिन खाना छोड़ना।
अच्छा, फास्टिंग।
हाँ, ये शरीर को सिग्नल देता है कि अरे मुश्किल वक्त है, मरम्मत शुरू करो। दूसरा, खास तरह का आहार, जैसे कुछ अमीनो एसिड कम करना, खासकर जो मांस में ज्यादा मिलते हैं। तीसरा, व्यायाम, खास तौर पर हिट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग,
जिसमें थोड़ी देर के लिए बहुत तेज कसरत करते हैं।
बिल्कुल। और चौथा है, शरीर को कभी कभी ठंडे या गर्म तापमान का अनुभव कराना, जैसे कोल्ड शावर लेना या सौना इस्तेमाल करना। ये सब तरीके हमारे सर्वाइवल सर्किट को धीरे से प्यार से जड़ाते हैं।
ये बातें सुनकर तो मुझे हमारी दादी नानी की बातें याद आ रही हैं। कम खाओ, मेहनत करो, कभी कभी उपवास रखो।
हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, बस फर्क ये है कि अब हम इसके पीछे के मॉलिक्यूलर साइंस समझ रहे हैं।
सही।
और इसी समझ से ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी खोजे गए हैं जो शायद हॉर्मेसिस जैसा ही असर दिखा सके बिना वो तनाव झेले।
अच्छा, मतलब गोलियों से काम चल सकता है?
ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? हाँ, यहाँ कई अणुओं की चर्चा है। इनको हम मोटे तौर पर कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक ग्रुप है जो NAD+ के लेवल को बढ़ाता है, जैसे NMN और NR। एनएडी प्लस सर्टुइंस के लिए फ्यूल जैसा है और उम्र के साथ ये कम होता जाता है। दूसरा ग्रुप सीधे सर्टुइंस को एक्टिवेट करता है, जैसे रेस्वेराट्रोल जो रेड वाइन और मूंगफली वगैरह में मिलता है।
हाँ, रेस्वेराट्रोल का नाम सुना है।
तीसरा ग्रुप एएमपी के पाथवे को एक्टिवेट करता है, मतलब बचाव मोड को बढ़ावा देता है, जैसे मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज की एक जानी मानी दवा है। और चौथा ग्रुप एमटीओआर पाथवे को रोकता है, ग्रोथ मोड को कम करता है, जैसे रैपामाइसिन। इन सब पर अभी बहुत रिसर्च चल रही है, ये याद रखना जरूरी है।
बाप रे, ये तो काफी सारे नाम हो गए, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मूल आइडिया ये है कि हम शायद दवाओं या सप्लीमेंट से भी अपने लॉन्गजेविटी पाथवेज को ट्वीक कर सकते हैं।
हाँ, यही संभावना तलाशी जा रही है। इसके बाद किताब भविष्य की ओर देखती है, पर्सनल मेडिसिन की बात करती है और ये कि हम अपनी बायोलॉजिकल उम्र कैसे माप सकते हैं।
बायोलॉजिकल उम्र कैलेंडर वाली उम्र से अलग?
एग्जैक्टली। जैसे हवाई जहाज उद्योग सेफ बना इंस्ट्रूमेंट्स और चेकलिस्ट से, वैसे ही मेडिसिन भी अब बीमारी के इलाज से आगे बढ़कर उसे रोकने और एजिंग को मैनेज करने की तरफ बढ़ रही है। एपिजेनेटिक घड़ियां जैसी टेक्नोलॉजी आ रही हैं।
एपिजेनेटिक घड़ियां?
हाँ, ये टेस्ट बता सकते हैं कि आपके कैलेंडर एज चाहे जो हो, आपका शरीर अंदर से कितना बूढ़ा या जवान है। इससे ये पता चल पाएगा कि जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हम कर रहे हैं वो काम कर भी रहे हैं या नहीं।
ये तो कमाल की बात है। और इससे भी आगे की कोई टेक्नोलॉजी?
बिल्कुल। इनोवेटिव मेडिसिन चैप्टर में और भी फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, जैसे सेनोलिटिक्स। ये ऐसी दवाएं हैं जो शरीर में जमा हो चुकी पुरानी जॉम्बी कोशिकाओं को खत्म करती हैं।
जॉम्बी कोशिकाएं?
हाँ, सिनेसेंट सेल्स। ये खुद तो ठीक से काम नहीं करती, पर आसपास की हेल्दी सेल्स के लिए इन्फ्लेमेशन और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं।
अच्छा।
फिर जीन थेरेपी की बात है, जिससे शायद हम अपनी सेल्स में लॉन्जेविटी जीन्स की एक्स्ट्रा कॉपी डाल सकें। और सबसे रोमांचक है सेल्युलर रीप्रोग्रामिंग।
सेल्युलर रीप्रोग्रामिंग?
हाँ, सिंक्लेयर की लैब ने कुछ खास प्रोटीन्स, जिन्हें यामानाका फैक्टर्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके बूढ़ी चूहों में आंखों की रोशनी वापस लाने में सफलता पाई है।
क्या, आंखों की रोशनी वापस
बूढ़े चूहों में? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा
है ना? बिल्कुल। ये अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसने संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं। और यहीं से किताब अपने आखिरी और शायद सबसे सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से में जाती है, भाग 3। हम कहाँ जा रहे हैं? अगर ये सब सच होता है तो इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा?
पर में घटी है तो शायद ओवर पॉपुलेशन का खतरा उतना बड़ा ना हो। लेकिन दूसरे सवाल हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए होंगी? शुरुआत में शायद हाँ, पर लेखक का मानना है कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी समय के साथ सस्ती और एक्सेसिबल हो जाती हैं। जैसे मोबाइल फोन को ही देख लीजिए।
बात तो सही है, लेकिन हमारी जिंदगी का क्या? अगर लोग 100-120 साल तक स्वस्थ और एक्टिव रहते हैं तो रिटायरमेंट की उम्र क्या होगी? करियर कैसे दिखेंगे? सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, इन सब का क्या होगा?
बिल्कुल, हमें इन सब चीजों को पूरी तरह से नए सिरे से सोचना होगा, रीइमेजिन करना होगा।
हाँ,
किताब का अंत एक आशा के संदेश के साथ होता है। सिंक्लेयर तर्क देते हैं कि उम्र बढ़ने को एक बीमारी मानकर उससे लड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे हमने संक्रामक रोगों से लड़ाई लड़ी है। वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी सेहत की कमान खुद संभालें और एक ऐसे भविष्य की उम्मीद करें जहां बुढ़ापा बीमारियों और लाचारी का दूसरा नाम ना हो।
वाकई, ये पूरी चर्चा दिमाग को सच में झकझोर देती है। अगर हम कुछ मुख्य संदेशों को समेटना चाहें तो क्या होंगे? मेरे लिए तो पहला और सबसे बड़ा टेक अवे यही है, उम्र बढ़ना शायद एक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। ये पूरी सोच को ही पलट देता है।
मेरे लिए दूसरा सबसे अहम संदेश है एजिंग का सूचना सिद्धांत, यानी प्रॉब्लम हार्डवेयर यानी डीएनए में उतनी नहीं है जितनी सॉफ्टवेयर यानी एपिजेनोम में है, और सॉफ्टवेयर को ठीक किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। ये बहुत होप देता है।
हाँ, ये आशावादी नजरिया है।
तीसरा, हॉर्मेसिस का महत्व, वो फायदेमंद तनाव वाली बात, थोड़ी मुश्किल थोड़ी चुनौती, हमारे शरीर को जगाती है। ये मुझे हमारी कई परंपरागत प्रथाओं की याद दिलाता है, जैसे व्रत उपवास या योग ध्यान की मेहनत, शायद उनमें गहरा विज्ञान छिपा था।
बिल्कुल। चौथा, हेल्थ स्पैन पर फोकस, न कि सिर्फ लाइफ स्पैन पर। असली लक्ष्य है लंबा और स्वस्थ जीवन, सिर्फ सालों की गिनती बढ़ाना नहीं, बल्कि उन सालों में क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए।
हाँ, और पांचवा, पर्सनल एजेंसी, मतलब हम खुद अपनी सेहत के ड्राइवर बन सकते हैं। हमें पैसिवली चुपचाप बैठकर बीमार होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम एक्टिवली अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनाव वो मायने रखते हैं।
सही कहा, किताब में कुछ पंक्तियां भी काफी यादगार हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। जैसे सिंक्लेयर का वो सीधा कहना, मेरा दावा है कि उम्र बढ़ना एक बीमारी है, ये सभी बीमारियों की जननी है, और मेरा विश्वास है कि ये इलाज योग्य है। कितना बोल्ड स्टेटमेंट है।
बिल्कुल, और वो सीडी और खरोच वाला मेटाफर वो मुझे बहुत पसंद आया। हमारा जीनोम एक सीडी है, एपिजीनोम उसे पढ़ने वाला प्लेयर। उम्र बढ़ने पर सीडी पर खरोच आ जाती है, एपिजीनोम में गड़बड़ी। गाना यानी जानकारी वही है, पर प्लेयर उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। कितना आसान बना देता इतनी मुश्किल बात को।
हाँ, वो कमाल का है। और हॉर्मेसिस पर भी एक जबरदस्त लाइन है, कठिनाई, संघर्ष और थोड़ी भूख हमें मारती नहीं है, वे हमें बनाती हैं। आज की जो हमारी आराम तलब दुनिया है, उसमें यह सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसमें गहरी सच्चाई छुपी है।
हाँ, और ये भी कि हम मरने के लिए प्रोग्राम नहीं किए गए हैं, हम जीने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ये सोच ही कितनी पॉजिटिव है। ये बताता है कि हमारा शरीर मूल रूप से सर्वाइवल के लिए बना है। एजिंग उसकी एक गड़बड़ी है, उसकी किस्मत नहीं।
तो ये सब सुनने के बाद जो लोग सुन रहे हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें?
हाँ, किताब कुछ व्यवहारिक सुझाव देती है, और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। हाँ, बेशक अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। पहला, खानपान। शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करें, जैसे वो 16:8 वाला नियम, 16 घंटे उपवास, 8 घंटे की ईटिंग विंडो, या बस अपने खाने की मात्रा थोड़ी कम करें। प्लेट में ज्यादा सब्जियां, फल, दालें रखें और रेड मीट कम करें। दूसरा, व्यायाम। रेगुलर कसरत बहुत जरूरी है, इसमें थोड़ा हाइट जैसे तेज दौड़ना या बर्पीस, और थोड़ा शक्ति प्रशिक्षण जैसे वजन उठाना या बॉडी वेट एक्सरसाइज, योग, पुशअप्स शामिल हों तो बहुत बढ़िया। तीसरा, तापमान। कभी कभी हिम्मत करके ठंडे पानी से नहाएं, या अगर मुमकिन हो तो सोना यूज करें। ये छोटे छोटे शौक शरीर को जगाते हैं।
बिल्कुल, और मेरे ख्याल से मानसिक स्तर पर भी कुछ बदलाव ला सकते हैं। सोच बदलें, अपनी कैलेंडर वाली उम्र पे कम और अपनी सेहत, अपनी एनर्जी लेवल पे ज्यादा ध्यान दें। प्रोएक्टिव बनें, सेहत पर नजर रखें, डॉक्टर की सलाह से रेगुलरली जरूरी टेस्ट, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स वगैरह करवाते रहें। आजकल स्मार्ट वॉचेस भी काफी कुछ ट्रैक करने में मदद करती हैं। सप्लीमेंट्स सावधानी से, किताब में NMN, रेस्वेरेट्रोल वगैरह की बात है जैसा हमने डिस्कस किया। इनके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, जानकारी लें, समझें, पर इन्हें कोई जादुई गोली न समझें और खुद से इलाज शुरू ना करें। ये हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि उम्र बढ़ने को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे अपने हाथ में भी बहुत कुछ है। हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले, हम कब खाते हैं, कैसे कसरत करते हैं, ये सीधे हमारे लॉन्जेविटी जीन से बात करते हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम वैचारिक बदलाव ये है कि एजिंग को एक बीमारी की तरह देखा जाए। इससे क्या होगा, शायद भविष्य में हम हार्ट अटैक, कैंसर, अल्जाइमर जैसी अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इलाज करने के बजाय उनके रूट कॉज यानी एजिंग प्रोसेस को ही टारगेट कर पाएंगे। ये एक ज्यादा इंटीग्रेटेड और ज्यादा उम्मीद भरा भविष्य दिखाता है।
और जाते जाते हम सबके लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर हम सच में उम्र को धीमा कर पाए या शायद पलट भी पाए, तो एक समाज के तौर पे, एक इंसान के तौर पे हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे? हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारा काम, रिटायरमेंट, सब कुछ कैसे बदल जाएगा? इस पे सोचना जरूरी है ना?
बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।